हरे कृष्ण। तो जनरली यहाँ पे हमेशा भगवद गीता, हर सोमवार को भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों पे चर्चा की जाती है, परंतु आज का विषय थोड़ा अलग रहेगा। अगले सोमवार को शारदीय रास पूर्णिमा है, उस दिन से कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और ये बहुत ही विशिष्ट उत्सव होता है। विशेष रूप से भगवान की जो भक्ति करना चाहते हैं, उनकी जो सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। आप में से कोई है यहाँ पे जो पहली बार आए हो? आप पहली बार आए हैं तो हम स्वागत करते हैं जो पहली बार आए हैं उन सब भक्तों का। हरे बाबा। जो आप पहली बार आए हैं तो आप यहाँ पे इसी वजह से आए हैं क्योंकि आपके अंदर भी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनकी भक्ति करने के प्रति, उनके भक्तों के बीच में आने के प्रति। तो हम इन्हीं कुछ विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति इस संसार के अंदर हमेशा सोचता है कि मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ सुखी रहने का, सभी प्रकार के दुखों से बाहर निकल जाने का। क्या कारण है? आज भी दुखी हूँ, चाहते हुए भी सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, चाहते हुए भी मेरा मन अशांत है। मैं हमेशा शांत रहना चाहता हूँ, हमारा मन हमेशा अशांत है, परेशान है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति इस खोज में लगा हुआ है कि कैसे मैं समझूं कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। वो बेचारा क्या कर रहा है? धन कमाने में लगा हुआ है, कोई फैमिली रिलेशनशिप बनाने में लगा हुआ है, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं, बिजनेस हर तरह से, अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब हो, नॉन गवर्नमेंट जॉब हो, मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब हो, खुद का बिजनेस हो, बड़े लेवल का बिजनेस हो। पर आप जितने से भी मिलेंगे, चाहे वो बहुत ज्यादा धनी मानी, बहुत गरीब मध्यम वर्गीय जीव हो, जिसके परिवार के अंदर कभी झगड़े ना होते हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से मिलिए, अलग अलग भगवान ने जितने भी लोग बनाए हैं सबके साथ अलग अलग समस्याएं हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मैं पूर्ण सुखी हूँ। क्या मिला आज तक कोई? नहीं। शरीर से बीमार होगा, घर में कलेश होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से दुख बना रहेगा। नेचर इस मटेरियल वर्ल्ड का। मान लीजिए कि आप कसाई खाने में जाएं और वहां पे जाके आप आशा करें कि वहां पे किसी के अंदर दया होगी कसाईयों में, क्या ये संभावना है? नहीं। अगर दया होगी तो वो कसाई खाना ही नहीं होगा, वो स्लॉटर हाउस ही नहीं होगा। स्लॉटर हाउस का मतलब ही है जहां पे दया नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तभी वो स्लॉटर हाउस है। वैसे ही ये मेटेरियल वर्ल्ड का नाम है हाउस ऑफ मिजरीज, दुखों का घर। तो कैसे आशा की जा सकती है कि कोई व्यक्ति यहां पे पूर्ण सुखी रहेगा? इम्पॉसिबल, नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए इस सृष्टि का नियम है कि यहां पे, जैसे इस देश का नियम है कि लेफ्ट साइड पे गाड़ियां चलती हैं लेफ्ट साइड पे चलती हैं। अमेरिका में, आई थिंक अमेरिका में और यूरोप में राइट साइड पे चलती हैं। हाँ, अमेरिका में, वहां के अगर यहाँ पे आएंगे प्रेसिडेंट, यहाँ पे आएंगे भारत में, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं होंगी, उनको रेड लाइट पे रुकना नहीं पड़ेगा, उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी प्रोटेक्शन के लिए। सच बात है। पर क्या उनके लिए नियम चेंज किया जाएगा कि जब तक प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे रहेंगे तब तक यहाँ पे भी राइट साइड पे गाड़ियां चलेंगी? नहीं, कुछ बेसिक नियम सेम रहेंगे हर कंडीशन में। तो वैसे ही कितनी भी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी हो, कोई भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा हो, उसके लिए विशेष फैसिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि उसको रेड लाइट पर नहीं रुकना पड़ रहा तो उसको कई सारी परिस्थितियों में ना रुकना पड़े, कष्ट ना आए। परंतु कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना पड़ेगा इस भौतिक संसार का, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि सबको आएगा। जैसे कई बार बोलते हैं, प्रभु जी आप तो भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप क्यों बीमार पड़ते हो? आप क्यों दुख आता है? हमने देखा, हमने इतनी भगवान की भक्ति करी, आज देखो क्या हुआ हमारे साथ। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस सृष्टि में रह रहे हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, ये सारे दुखों को बाहर जाना चाहते हो, इन सब से बचना चाहते हो, तो निकलो यहां से। अगर वो प्रेसिडेंट राइट साइड पे ही चलना चाहता है तो फिर उसको भारत में नहीं रहना पड़ेगा, वापस अपनी कंट्री में जाए। सच बात है कि नहीं? उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा सकती है, पर बेसिक रूल्स नहीं चेंज किए जा सकते कंट्री के। वैसे ही अगर आप भगवान की भक्ति करें तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। जहां पे आपको पढ़ना था सिर पे डंडा, वो हाथ पे डंडा पढ़ के काम चल जाएगा, पर डंडा पड़ेगा क्योंकि सृष्टि का नियम है ये। हाँ, ये फैसिलिटी आपको दी जाती है क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। आप अगर सिंसियर हो, आप जाना चाहते हो, आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हो, तो फैसिलिटी दी जाती है कि ऐसी सृष्टि से बाहर निकले जहां पे पूर्ण आनंद में धाम है, वहां पे आप जाएं, पूर्ण सुख में रहें। ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि इमेजिनेशन नहीं है कि ऐसी कोई दूसरी जगह भी एग्जिस्ट करती, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये लिखा हुआ है कहां पे? हमारे वैदिक शास्त्रों में। वैदिक शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है वो परम सत्य है। आज की साइंस जिन चीजों को आज जाके प्रूव कर पा रही है, हमारे शास्त्रों में सब पहले से लिखी जा चुकी है। कैसे माता के गर्भ में जो एम्ब्रॉयड होता है वो डेवलप होता है संतान, हमारी साइंस ने 200-250 साल में निकाला है। श्रीमद् भागवतम के अंदर थर्ड कैंटो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि किस किस सिचुएशन में उसकी क्या स्थिति होती है, कैसे उसके हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं, कॉन्शियस कब होता है वो। ये सारी चीजें आज से लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में लिखी जा चुकी है। आज कितनी सारी मशीनें यूज करके, कितनी सारी तरह तरह की कैलकुलेशंस यूज करके आज की साइंस बता पाती है कि कब मौसम की क्या स्थिति रहेगी, सूर्य उदय कब होगा, अस्त कब होगा। उसमें भी हर कई बार प्रॉब्लम होती है, 2-3 मिनट का फर्क आ जाता है। हमारी साइंस 100% परफेक्ट वैदिक साइंस आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है, गणना कही जा चुकी है और कई कई हजार सालों तक का बता दिया गया है कि इस दिन सूरज इस समय निकलेगा, इस समय डूबेगा, इस समय मौसम ऐसा रहेगा, ज्योतिष शास्त्र से। आप अगर किसी के पास जाते हैं पंचांग जो देखते हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं होते कोई, वो बहुत बड़े कुछ मॉडर्न साइंस मॉडर्न नॉलेज उनके पास नहीं होती, मॉडर्न एजुकेशन नहीं होती उनके पास। कुछ वेदों की नॉलेज होती है, पंचांग देख के आपको कई कई समय तक का बता देंगे क्या स्थिति रहेगी मौसम की और सूर्य और चंद्रमा की। ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, सुपर इंटेलिजेंट लोगों ने लिखा हुआ है वो शास्त्र। आज के जैसे बुद्धू लोगों के नहीं, जो अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करते रहते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स चेंज होते रहती है। कुछ टाइम तक कुछ प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ऐसा कोई प्लैनेट ही एग्जिस्ट नहीं करता। होता कि नहीं होता? आज की साइंस बताती है कि हमें पहले से पता लग गया था सुनामी आने वाला, तो रोक लेते हैं, क्षमता नहीं है किसी में, यहां तक की सूचना देने तक की क्षमता नहीं है। वैदिक साइंस परफेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वास्तव में इंटेलिजेंट है, वो एक्सेप्ट कर पाएगा। और सेंटिमेंटल है, वो क्या सोचेगा कि आज की साइंस जो कह रही है वही सही है, जो उन्होंने इनोवेट किया आज से कुछ सालों के अंदर ही वही सही है, और चेंज होता रहेगा समय समय के साथ साथ, उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहेंगी। हम देखते हैं कि न्यूटन की फिलॉसफी किसकी फिलॉसफी है जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है? हाँ, डार्विन की फिलॉसफी, उसकी थ्योरी जो दी हुई उसने, आज दुर्भाग्य की बात है भारत में आज ही पढ़ाई जा रही है, पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां से हटा दिया गया उसको, मॉडर्न एजुकेशन से भी हटा दिया गया, बोला कि ये थ्योरी गलत, अभी नई थ्योरी आई है। चेंज, खुद को ही विश्वास नहीं है कि हमारी थ्योरी परफेक्ट है या नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बोगस एजुकेशन है। ऑफकोर्स आज के टाइम पे इस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में स्टेटस के लिए, बट अगर कोई सोचे है कि ये एजुकेशन हमारे को परफेक्शन दे सकती है तो इम्पॉसिबल। हमारे शास्त्रों में जो नॉलेज दी गई है परफेक्ट है, तो उन शास्त्रों के आधार पे अगर व्यक्ति चलेगा तो उसको वो जिसको कुछ लोग मिथ कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं, वो ऐसा धाम प्राप्त हो सकता है जिसमें कभी दुख नहीं होता। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्षा लक्षा वृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वहां पे चिंतामणि धाम है भगवान का, वहां के जो पेड़ पौधे हैं कल्प वृक्ष है, वो जिसको जो आवश्यकता वो देने को तैयार है, परंतु लोग लेते नहीं उनसे, सब कुछ केवल फल लेते हैं, काम धेनु है, जिनको भगवान सेवा करते हैं, जिस चीज की आवश्यकता देने को तैयार है पर लोग उनसे केवल दूध लेते हैं। हजारों लक्ष्मियां यहाँ पे एक एक लक्ष्मी के लिए लगे हुए लोग, ओम जय लक्ष्मी माता, सब कुछ तुमसे आता, इसीलिए तुम्हारा मन हम पे भाता, ऐसी स्थिति है। परंतु वहां पे हजारों लक्ष्मियां लगी हुई लाइन में कृष्ण की सेवा के लिए, फैक्ट है ये। बड़े बड़े आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व भर के अंदर जो वास्तविक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे टीडी सिंह जी हुए, जो कि बाद में संन्यास लेने के बाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के नाम से जाने गए, साइंटिस्ट थे, कितने सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने प्रीच किए, डॉक्टर्स, बहुत सारे जो है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, फॉलो करेंगे तो रियलाइज भी करेंगे। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, दबीर खास साकर मलिक के नाम से, अपनी सारी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी उनकी, सोने के सिक्के थे उनके नाम भरी हुई, इतना धन था उनके पास, वो छोड़ के वृंदावन में चले गए रहने के लिए। अगर किसी को कुछ हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसी चीज, ऐसी संपत्ति को कोई छोड़ सकता है क्या? कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। हायर टेस्ट मिलेगा तब छोड़ सकता है, रियलाइज करेगा, और वो रियलाइज तब करेगा स्पिरिचुअल लाइफ में जब दूसरी जगह पे स्पिरिचुअल लाइफ में वो टेस्ट एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं उसका अनुभव कैसे करूंगा? कर सकता हूं क्या? किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसका अनुभव कैसे करूंगा? मान लीजिए अमेरिका नाम की कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं उसके बारे में जानूंगा कैसे? उधर जाने की इच्छा कैसे होगी मेरी? नहीं। तो वैसे ही ये दबीर खास साकर मलिक बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग थे। जब इनको वृंदावन और भगवान के धाम के बारे में पता चला तो इन्होंने सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए। क्यों? हायर टेस्ट के लिए। तो व्यक्ति आज के समय पे ये सोच रहा है मैं कैसे सुखी रहूं, पर दुर्भाग्य है, बिल्कुल सही इच्छा है, जो हम हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम सब जीव जो हैं वास्तव में भगवान के अंश होने के कारण सच्चिदानंद में है, हमारी जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को कहते हैं, हमारी नित्य स्थिति जो है वो कैसी है? हम सच्चिदानंद में है, सत मीन्स हम शाश्वत है, इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है और एवर ब्लिसफुल है। और हर व्यक्ति ये चाहता है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद में रहे। कोई चाहता है मैं हमेशा दुखी रहूं? आप में से कितने भक्त हैं चाहते हैं हमेशा दुखी रहे? कितने चाहते हैं जो हमेशा आनंद में रहे? सब चाहते हैं। कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं? सब चाहते हैं कि मैं इटर्नल रहूं, शाश्वत रहूं। सच बात है। कोई चाहता है कि मैं हमेशा बुद्धू रहूं? हर व्यक्ति चाहता है कि जितना नॉलेज है सबसे ज्यादा नॉलेज हो मेरे पास। सच बात है कि नहीं? ये जो हमारी इच्छा है, जेन्युइन इच्छा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी असली स्थिति यही है कि हम सच्चिदानंदमय है, हम फुल ऑफ नॉलेज है, एवर ब्लिसफुल है और इटर्नल है। ये हमारी असली स्थिति है। तो और इस समय स्थिति क्या है कि हम सही चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी स्थिति है, पर बीच में कुछ गड़बड़ है, कुछ लिंक है, कुछ गैप है, कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से हम अपनी असली पोजीशन को अचीव नहीं कर पा रहे। मान लीजिए रेलवे ट्रैक है जो कि बॉम्बे की तरफ जाता है, उसके ऊपर ट्रेन खड़ी है जो बॉम्बे जाने वाली है, इंजन भी है, ट्रेन भी है, और जो बाकी के ट्रेन है, बोगियां हैं और जो इंजन है, उसके बीच में जो लिंक होता है, जो कनेक्शन होता है, वो नहीं है, गैप है वहां पे। जब इंजन चलेगा तो इंजन बॉम्बे जाएगा कि नहीं? बाकी की ट्रेन जाएगी? सही ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं जाएगी। क्यों? बीच में कुछ गैप है, लिंक, कुछ मिसिंग लिंक है बीच में। वैसे ही हम सही ट्रैक पे हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, हम अमर रहना चाहते हैं, शाश्वत रहना चाहते हैं, सही ट्रैक पे हैं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, ये हमारी असली स्थिति है। हम ऐसे नहीं है कि ये मल मूत्र से बदबू वाले शरीर में फंसे हुए लोग, हमारी ये असली पोजीशन नहीं है। ये शरीर 20, 25, 30, 50, 60 साल के बाद खत्म हो जाता है, हम फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी असली पोजीशन क्या है? वो यही है कि हम इटर्नल हैं, पूर्ण ज्ञान में हैं, पूर्ण आनंद में हैं। हम सही ट्रैक पे हैं, हम यही प्राप्त वापस अपने असली पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, सही ट्रैक पे हैं, मिसिंग लिंक के बीच में एक, और वो मिसिंग लिंक क्या है? कृष्ण. क्या है? क्या है? कृष्ण. कृष्ण बीच में अगर कृष्ण हम डाल दें, हमें अन्य और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, गहरे वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, नहीं. जिस स्थिति में है, स्थाने स्थिता श्रुति गता तनुमान मनोभीर, जिस स्थान पे उसी स्थान पे रहे, अपने घर पे रहे और तन मन और वाक से भगवान की सेवा करने का प्रयास करें, भगवान का गुणगान सुने, उनका गुणगान करें अपनी जिह्वा से. केवल ऐसा करने मात्र से ही क्या होगा? भगवान श्री हरि जो कि अजीत कहलाए जाते हैं, अजीतो पितृलोक के, तीनों लोकों में कोई उनको जीत नहीं सकता, परंतु ऐसा भक्त जो मन और बुद्धि दे करके किसी भी स्थान पे अपने घर में रह के भी, जरूरी नहीं है कि जंगल जाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ सब कुछ त्यागने की जरूरत पड़ेगी, स्थान स्थित जिस स्थान पे उसी में रहो, वहां पे रहकर भी अगर कोई इसको सिंसियरली भगवान के नाम कीर्तन को करता है, उनकी कथाओं को करता है, तो भगवान को जीत लेगा. कैसे जीत लेगा? ऐसे भगवान को अपने हृदय में बिठा लेगा, कैद कर लेगा, उसके अंदर ये सामर्थ्य आ जाएगी. और जिसके हृदय में भगवान हो, कि उसके जीवन में कोई और समस्या रह सकती है क्या? नहीं. इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अगर हम अपने इस संसार के सारे दुखों से का शमन चाहते हैं, अनर्थों का शमन चाहते हैं, तो हमारे को भगवान श्री हरि के चरणों में चित्त को स्थिर करना पड़ेगा. बोलते नैशा मतिम यावत उरु कमांगरी स्पर्शित नर्थोपगमन जदर्था. क्या बोलते हैं? कि जब तक हमारी चित्त वृत्ति, हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक हमारे अनर्थ समाप्त नहीं होंगे. अनर्थ का मतलब हम अपनी जो फॉल्स आइडेंटिटी के अंदर पड़े हुए हैं, फॉल्सली अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस बॉडी के साथ और कष्ट उठा रहे हैं. इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा दुख उठाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हम अपनी असली पोजीशन जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, इटर्नल रहना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान में रहना चाहते हैं, इसको प्राप्त तो करना चाहते हैं, पर हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे कि यही हमारी ओरिजिनल पोजीशन है. कंडीशनिंग, अपने आप को आइडेंटिटीफाई कर रहे हैं इस बॉडी के साथ. जैसे कई बार हम देखते हैं कि कार में कोई व्यक्ति जा रहा होता है, वो कार के ऊपर थोड़ा बहुत ऊंचाई पे होता है, ऐसा नहीं होता कि कार के ऊपर उसको बिल्कुल डंडा लगने वाला है. कुछ बैरिकेटर से होते हैं ऊंचे ऊंचे, जो ट्रक वगैरह के लिए होते हैं, कार के लिए नहीं होते. तो ऐसा नहीं होता कि कार के शीशे पे लगने वाला है, पर वो कार के अंदर जो ड्राइव कर रहा होता है व्यक्ति, वो इतना कॉन्शियस होता है उस कार के साथ, अपने आप को इतना आइडेंटिफाई करता है, जैसे ही उस कार के नीचे, उस बैरिकेटर के नीचे से निकलता, कार में बैठा हुआ ऐसा हो जाता है. सच बात है नहीं? आइडेंटिफाई. तो वैसे ही हम अपने आप को फॉल्सली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस बॉडी के साथ, इसीलिए इस बॉडी के ऊपर कुछ भी थोड़ा भी कष्ट और विपत्ति आती हुई दिखती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारे को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं. तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये अनर्थ है सबसे बड़ा, कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस बॉडी के साथ. जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, भगवान के नित्य दास के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में, हमारे को दुख नहीं सताएंगे, दुख आते हुए भी हमें नहीं सताएंगे. और ये अनुभव हमने देखा है, ये कोई मनोगढ़ंत कल्पना नहीं है कि ऐसा होगा. हम देखते हैं भक्तों के जीवन में, कुछ भक्त जो इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं, श्रीला प्रभुपाद और अन्य कई वैष्णव, देखने में ऐसा लगा डॉक्टर हैरान हो गया प्रभुपाद से मिलने के बाद, बोला कि इस व्यक्ति के अंदर डॉक्टर परेशान है. जब उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि आप इतने क्यों परेशान है हमारे गुरुजी से मिलने के बाद, बोले कि इस व्यक्ति को कराहना चाहिए, तड़पना चाहिए, करवट लेने की इसके अंदर क्षमता नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ बोलने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, तड़पना चाहिए इसको दर्द से, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर खून नहीं है. और ये व्यक्ति मुझे बोल रहा, हाउ आर यू डॉक्टर, आर यू हैप्पी? तो ये श्री प्रभुपाद की स्थिति. तो ये हम देखते हैं प्रत्यक्ष अपने रोजमर्रा के जीवन में, अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो ये कोई मन घड़त कल्पना नहीं, ऐसा होता है. हमारे शास्त्रों में बताया गया, देह स्मृति नाही जार संसार दुख कहा था. जिसको अपने देह की स्मृति नहीं है, जो अपनी असली पोजीशन को समझ चुका है, तो उसको संसार के दुख नहीं सताते. ये सत्य बात है, शास्त्रों का मत है ये. तो इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा अनर्थ है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस देह के साथ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तब तक ये आइडेंटिफिकेशन हमारी खत्म नहीं होगी या ज्ञान हमारा खत्म नहीं होगा जब तक हमारा मन श्री हरि के चरणों में लगेगा नहीं। परंतु फिर बताते हैं इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा मन लग जाए। नहीं लगता, इस संसार में इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है हमारे को यही सत्य लगता है। मतिन्न कृष्ण पर तो सतो विथो विपद्यत ग्रह भ्रता नाम अदांत गोभीर विशुता मिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्मणा नाम। मतिन्न कृष्ण पर तो सतो, जो व्यक्ति अपने घर में अपनी वस्तुओं से, अपने परिवार से, अपने बिल्डिंग से, अपने पंखों से, अपनी घड़ी से, अपनी एक एक चीज से अटैच हो चुका है, आसक्त हो चुका है और उसको लगता है कि यही सब कुछ है, यही सारी सृष्टि है मेरे लिए, मूर्तावत सोचता है, उसको ये नहीं समझ में आता कि 20, 25, 30, 50, 60 साल के बाद ये मेरा नहीं होगा, मैं हूंगा ही नहीं यहां पे, मेरी ये जो देह है राख हो जाएगी या फिर कीड़े खा रहे होंगे अगर दफना दिया गया तो, पानी में डाल दिया गया तो मछलियां खा रही होंगी, पर ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी एक समय के बाद। नहीं समझता, अटैच रहता है। ऐसे व्यक्ति की मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगती। मति में कृष्ण पर तो सतोगा, अपने प्रयासों से तो लगेगी नहीं क्योंकि वो बेचारा प्रयास करेगा ही नहीं, और दूसरा भी उसको कहेगा तो कहेगा रहने दो जी, तुम अपना भजन करो, हमारी जिंदगी सही चल रही है। ऐसा होता है, नहीं लगता मन, और फिर उसकी स्थिति क्या होती है, अदांत गोभीर विश्रांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्विता चरणा नाम। उसकी स्थिति क्या होती है, हजार सैकड़ों सालों से जिस चीज की, दरवाजा बंद कर दीजिए बाहर बच्चों का शोर आ रहा है, सैकड़ों सालों से हम देख रहे हैं लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए, सेम फिलोसफी को अपना रहे हैं, सेम बिजनेस करेंगे, धन कमाएंगे, तरह तरह की जो पैतरे हैं वही सेम दोबारा अपनाए जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ तरीके थोड़े थोड़े से चेंज हो रहे हैं पर काम वही किया जा रहा है। यही सोच रहे व्यक्ति की धन कमाने से सुख मिलेगा, फैमिली में रिलेशन बनाने से सुख मिलेगा, दूसरे लोगों से रिलेशन बनाने में सुख मिलेगा, सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं, बस इनके तरीके थोड़े चेंज हो गए, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया। सच बात है या गलत? वो देखा कि मेरे माता पिता सुखी नहीं हुए, उनके माता पिता सुखी नहीं हुए, उनके माता पिता सुखी नहीं हुए, और सेम वही सब जो उन्होंने किया वही दोबारा वो करता है, सेम वही काम पुनः पुनश्चर्वित अचर्वणा नाम, वही संतान उत्पन्न करता है, वही तरह के सारे कार्य करता है। जैसे कि आप गन्ना चूस के, बढ़िया से चूस के चबा के फेंक दो, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको दोबारा चबाने लगे तो कुछ मिलेगा क्या उसको? ये होता है दोबारा दोबारा चबाई हुई चीज को चबाना, तो सेम चीज को बार बार कर रहे हैं। वो सोचता है वो भी सुखी नहीं हुए, वो भी सुखी नहीं हुए, वो भी सुखी नहीं हुए, पर हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना? मैं जो है इंटेलिजेंट आदमी हूं, पर ऐसा होता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं सुखी होऊंगा, एक दिन हम होंगे कामयाब, कामयाब, कामयाब होने से पहले कयामत आ जाती है। सच बात है कि नहीं? कोई कामयाब नहीं होता, कोई अल्टीमेट हैप्पीनेस को नहीं प्राप्त कर पाता इस भौतिक संसार के अंदर। और उसकी स्थिति क्या होती है, जब ऐसी आसक्तियों के अंदर सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते करते अदांत गोभीर विशितांत मिश्रम, नारकीय जीवन में जाना पड़ता आगे उसको। तो फिर क्या करें, क्या करें जिससे कि हमारा मन भगवान श्री हरि के चरणों में लगे? क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगेगा नहीं तब तक इस संसार का दुख नष्ट होगा नहीं। क्या करें फिर? और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तब तक मन लगेगा नहीं जब तक इस संसार से आसक्ति खत्म होगी नहीं। कैसे आसक्ति खत्म होगी? तब प्रहलाद महाराज बताते, महीयशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम ना व्रणी तयावत। ऐसे भक्त जिनकी मति भगवान के चरणों में लगी हुई है, जो भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की चरण रज को उठा के अपने शीश पे धारण करें, इससे हमारी भी मति भगवान के चरणों में लगेगी, हमारी भी अटैचमेंट भगवान से होगी। उनके चरण रज को शीश पे धारण करने का अर्थ है कि उनसे आसक्त होकर उनकी सेवा करें, उन भक्तों की, श्रील प्रभुपाद की सेवा करें, श्रील प्रभुपाद को हेल्प करें उनके प्रीचिंग मूवमेंट में, उनके भक्तों को, उनके शिष्यों को हेल्प करें, उनकी सेवा करें। जब हम उनको सेटिस्फाई करेंगे तो उनकी कृपा से हमारी मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगेगी। भगवान कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं क्या बताते हैं, प्रसंग मंजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि सब जानते हैं विद्वान लोग कि इस संसार में जो अटैचमेंट है वो दुख का कारण है। प्रसंगम अंजरम पाशम, बंधन का कारण है, पाशम पाश का कारण है, सब जानते हैं और हम देख रहे हैं, हमारा अनुभव है ये सबका, कि हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, जिस चीज की प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, जिसको सुख देने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, आने वाले समय में कुछ समय के बाद वही वस्तु वही व्यक्ति हमारे सबसे बड़े दुख का कारण होता है। सच बात है या गलत? प्रसंग मंजर पाशम, इस मेटीरियल वर्ल्ड में किसी से भी अटैचमेंट है तो अंजरम पाशम, पाशम बंधन का कारण है। फिर वो बोलते हैं कपिल देव, सर्व साधुषु कृत मोक्ष द्वारम अपावृतम, यदि वही अटैचमेंट वही आसक्ति भगवान श्री हरि के भक्तों में कर दी जाए तो क्या होगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, परम सुख परम आनंद प्राप्त होगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ऐसे भगवान के भक्तों की सेवा से, उनके संग में श्री हरि कथा का गान सुनने से ही किसी को जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। जब भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया, बोले बोलो क्या चाहिए, कह रहे कुछ नहीं चाहिए, बोले तुम तो तपस्या कर रहे थे बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए भी, अपने पिता से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा जी के जैसा राज्य से भी ऊंचा राज्य, अभी क्यों? तो बोलते हैं कि नहीं चाहिए, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम प्राप्तान तम, अब मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया, मैं स्थानाभिलाषी, मैं इस अच्छी हाई पोजीशन को प्राप्त करने के लिए तपसी स्थित हम, परंतु अभी मुझे क्या हुआ है, प्राप्तान तम देव मुनिन्द्र गोयम, मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, मैंने आपको प्राप्त कर लिया जो देवी और देवताओं और मुनियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किए जाते। काचम विचंदन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के पीछे भाग रहा था, मुझे क्या पता था कि मुझे दिव्य रत्न की प्राप्ति होने वाली है, मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी। तो बोले कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, बोले नहीं मुझे केवल यही चाहिए कि आपके भक्तों के संग में आपकी कथाओं का गान सुनूं, आपकी सेवा में लगूं, आपके भक्तों के संग में। तो बोले क्यों भगवान विष्णु, बोले ऐसा क्यों? तो बोले प्रहलाद महाराज, क्योंकि आपके भक्तों के संग में आपकी कथाओं के श्रवण में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको तो आप भी नहीं समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति हम में से सिंसियरली इस बात को स्वीकार करके कि ये भगवान की कथा है और जो भगवान का नाम कीर्तन है, स्वयं भगवान सभी ने अपना हृदय देके अगर इसको श्रवण और कीर्तन में लगाए तो भगवान भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते जिस आनंद की अनुभूति भगवान का भक्त करता है। इसी बात को सोच सोच के कृष्ण परेशान हो गए कि मेरे भक्त को मुझसे ज्यादा आनंद क्यों मिल रहा है, और उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा देखने के लिए, और स्वयं भक्त बनके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इस आनंद का आस्वादन करने के लिए। तो बहुत बड़ी महिमा है भगवान के भक्तों के संग की, बहुत बड़ी महिमा। यदि हम भगवान के भक्तों के संग में उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं भगवान की सेवा में, निश्चित रूप से परम आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जितने बड़े स्तर पर प्राप्त हो उतना अच्छा है, और श्री वृंदावन धाम में प्राप्त हो तो सबसे अच्छा है। तो आने अभी हम जैसे जानते हैं कि अगले कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, सोमवार को शारदीय रास पूर्णिमा आने वाली, उस दिन से कार्तिक का महीना शुरू होगा। कार्तिक का महीना भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। और यदि कोई कार्तिक के महीने में श्री वृंदावन धाम में जाता है तो उसको करोड़ों करोड़ों जन्मों के अंदर भी वो दान पुण्य इत्यादि करके इतना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जितना एक रात्रि वहां बिताने से प्राप्त होता है उसको। अन्य सारे तीर्थों पे बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से, पुष्कर इत्यादि में वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो केवल एक रात वहां बिता देने से प्राप्त होगा। कहा? श्री ब्रजमंडल धाम, वृंदावन धाम में। और वो सुपर पावरफुल हो जाएगा यदि वो आप वहां पे वास करें भक्तों के संग में। कार्तिक मथुरा महात्म्य में पद्म पुराण से बताया जाता है कि सुलभा मथुरा लोके प्रत्यब्ध कार्तिकस्तथा। इस संसार के अंदर विशेष रूप से पृथ्वी पे मथुरा मंडल जो है, ब्रजमंडल जो है, बड़ा सुलभ है। बताते हैं कि देवी देवता इत्यादि अलग अलग जो लोकों के जो जीव हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि काश हम भी कभी वृंदावन जा पाएं। सौभाग्य उन लोगों का जिन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, जिनके लिए बड़ा इजी है। कहाँ जाना? वृंदावन जाना। और उसमें भी जो भारत वर्ष में जन्म लिए हैं, भारत भूमि पे जन्म लिए हैं, बाहर से हमारे जो डिवोटीज हैं उनको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए, वीजा लेने के लिए कई सारी परेशानियां। और उसमें भी जो ऐसी कंट्रीज में भक्त हैं, पाकिस्तान जैसी, जिनको भारत वीजा देता ही नहीं है, बेचारे पूरा पूरा साल बिता देते हैं वीजा के लिए, अपनी सारी धन संपत्ति व्यय कर देते हैं वीजा लेने के लिए कि वो वृंदावन जा सके। कितना बड़ा सौभाग्य उन लोगों का जिनको वीजा नहीं लेना पड़ता, भारत भूमि में जन्म लिए। और उससे भी बड़ा कितना सौभाग्य उन लोगों का जो दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ से केवल 3 घंटे लगते हैं वृंदावन जाने में। बहुत सुलभ है यहाँ पे। सुलभा मथुरा लोके प्रत्यक्ष कार्तिकस तथा नरा मूल भवान बुद्धि। फिर भी जो मूल बुद्धि है, जो बेवकूफ लोग हैं, वो लोग इसका लाभ नहीं उठाते, मथुरा मंडल में नहीं जाते। कार्तिक का महीना भी आता है जो कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, मथुरा भी सुलभ है, सब कुछ होते हुए भी जो कम बुद्धि के लोग हैं वो मथुरा मंडल में नहीं जाते कार्तिक के महीने में। तो जो कार्तिक के महीने में ब्रज में नहीं जाता तो वो पहले दर्जे का मूर्ख है। तो हर व्यक्ति को चाहिए, हम सबको चाहिए कि कार्तिक के महीने में कम से कम एक बार जरूर ब्रज में जाएं। और अगर भक्तों के संग में जाएं तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। एक बार जरूर जाएं, सबको जाना चाहिए। कई साधु हैं, कई गृहस्थ भक्त भी हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस वगैरह सब छोड़ के एक महीना कार्तिक में रह के भजन करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसमें भी यदि भगवान के भक्तों के संग में है, भगवान के भक्तों के संग में वहां जाते हैं तो उसका लाभ ही कुछ और है। जैसा हमने बताया कि भगवान के भक्तों के संग में जो आनंद अनुभूत कर सकता है एक व्यक्ति, भगवान भी उसको समझना चाहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हमेशा किसी भी स्थान पर रहें, दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, चेन्नई, कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे रहें। प्रयास करें कि जितना समय हम भगवान के भक्तों के संग में रह सकें, उनसे सुन सकें, उनकी सेवा कर सकें, या कभी अगर भक्तों से मिले तो पूरा लाभ उठाएं, उनकी सेवा करें, उनसे भगवान के बारे में सुने और उनके नामों के कीर्तन में भक्तों के साथ पार्टिसिपेट करें, तभी हमारे को अपने जीवन की असली उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये जो हमारे अनर्थ है जो कि हमारे को कष्ट दे रहे हैं संसार में, उनसे हमारी मुक्ति हो सकती है। महेश्याम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचना नामना प्रणीत यावत, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। तो किसी भी स्थिति में रहे, भगवान के भक्तों के संग में रहे। और जब कार्तिक का महीना आए तो प्रयास करें भगवान के भक्तों के संग में वृंदावन में भी जाएं। हमारे मंदिर से भी हर साल कार्तिक में यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। इस बार भी दो तीन चार नवंबर की यात्रा है, 2 दिन वृंदावन 1 दिन बरसाना रहेंगे। और भक्तों के संग में वहां पे हमारे श्री गुरुदेव भी साथ में रहेंगे, श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रतिदिन कथा भी करेंगे। ऐसे भक्तों के संग में हम वहां पे जाएं अगर हमारे लिए संभव है, हम सबको प्रयास करना चाहिए जाएं। और इन केस किसी कारणवश हमारे को लगता है कि उस समय पे हम नहीं जा पाएंगे, जिस समय पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारे भक्त एक साथ जा रहे हैं और कथा कीर्तन होने वाला है, तो एटलीस्ट बेनिफिट लेने के लिए बाद में जरूर जाएं। जरूर जाएं। आप में से कितने भक्त हैं जो कार्तिक के महीने में जाएंगे ब्रज में? 80% आप नहीं जाएंगे। तो जी बहुत नजदीक है, हमें प्रयास करना चाहिए जाए। और जब वहां पे जाएंगे हम देखेंगे एक अलग ही अनुभूति होगी। ब्रजराज ऐसी है कि जैसी अगर आप उसके ऊपर पैर रखते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, और भक्तों के साथ वहां पर अगर कथाओं का श्रवण करते हैं, नामों का कीर्तन करते हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। इस संसार के अंदर जो अभी तक हम परेशान हो रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि भगवान के चरणों में मन क्यों नहीं लग रहा, और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे वो परेशान हो रहे हैं कि हम दुखी क्यों हैं, सुख क्यों नहीं मिल रहा। दोनों की समस्याओं का समाधान है ब्रजमंडल में भगवान के भक्तों के संग में। और यहाँ पे भी ये स्थान भी जो मंदिर है, अगर आप रेगुलर बेसिस से वृंदावन नहीं जा सकते तो इन मंदिरों में आए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जिस स्थान पे भगवान के नामों का निरंतर कीर्तन होता है, उनकी कथाएं होती है और शिव विग्रह की उपासना होती है, वो स्थान भगवान के धाम वृंदावन से अभिन्न होता है। तो हम प्रयास करें जितना समय हम भक्तों के साथ आ सकते हैं यहाँ पे रेगुलर आने का प्रयास करें, भगवान के भक्तों के साथ कथा कीर्तन का श्रवण करें, और जब भी समय निकाल सके भक्तों के साथ वृंदावन धाम में जाएं, और विशेष रूप से इस कार्तिक के महीने में, और पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।